सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उलहक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।
वेलकम टू सोच विचार। आप सब मेरी तरह देख रहे होंगे कि रिको डिक का मामला दोबारा गर्म हो गया है। ये पिछले 20 साल से एक प्रोग्राम पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ दुनिया में मिनरल माइनिंग कॉरपोरेशंस के साथ माहदों में मुलव्वस है, पर यह मामला कभी कभी रेडियो टीवी पे न्यूज़पेपर में गर्म हो जाता है और कभी ठंडा पड़ जाता है। पर हर कॉलमिस्ट सोचता है इस पर, थोड़ी सी अखबारों में बातें पढ़ के वो एक्सपर्ट बन गया और बहुत सारी बातें इस पर की जाती हैं जो कम अज़ कम मुझे तो बड़ी क्वेश्चनेबल लगती हैं, बिकॉज किसी के पास कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है नहीं। मैं सब अपने कॉलमिस्ट भाइयों से, एंकरों से कहता हूँ कि पहले इस पर तहकीक कम्प्लीट कर लें। तो मैंने एक साहब हैं जिनको मैंने आज दावत दी है, जो इस मामले को सबसे अच्छा समझते हैं। समर मुबारक मंद साहब हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और माशाल्लाह बड़े अव्वल दर्जे के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में बड़ी अच्छी खिदमत पर अंजाम दी है। इन्होंने बाकी प्लानिंग कमीशन में मेंबर रहे हैं। इन्होंने हमारे थर कोल और बाकी मिनरल माइनिंग के काफ़ी सारे शोबों में बहुत हिस्सा लिया है। तो मैं इनका कोई लंबा तारुफ नहीं कराता क्योंकि आप सब इनको जानते हैं, पर मैं ये आपको बता दूं कि रिको डिक के मामले में इनको सबसे ज़्यादा पता है, बिकॉज इन्होंने फिजिबिलिटी भी पढ़ी है, इन्होंने सब मामलात अच्छी तरह समझे हैं क्योंकि ये प्लानिंग कमीशन में भी थे और वैसे भी इस मामले में ये काफ़ी मुलव्वस रहे हैं। हाँ, कुछ लोग इनका रोल कंट्रोवर्शियल भी समझते हैं, ये भी कहते हैं कि इन्होंने इस मामले में ख़राबी की है, पर मेरा ख्याल है कि बजाय किसी की ज़ातियात और उस पर उतरने के, उसकी बात तो सुननी चाहिए, ख़ास तौर पर जबकि वो इतना पढ़ा लिखा बंदा हो जितना समर मुबारक मंद है। तो इसलिए हम समर साहब से आज बात करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, पहले हम समझ तो लें रिको डिक है क्या, फिर आगे बात करें। और मेरे दोस्तों एंकर और न्यूज़पेपर्स वालों से मैं ये दोबारा दावा देता हूँ कि वो इस प्रोग्राम को अच्छी तरह सुनें, तहकीक अपनी पूरी करें इस मामले पे, इससे बेहतर कि वो बयान दे दें कि हम अपना सब कुछ किसी और को पकड़ा दें बगैर नेगोशिएट किए, बगैर उसको समझे और बगैर उसके साथ हमें थोड़ा सा अपना हिस्सा भी बराबर लेने के। तो आइए समर मुबारकबान साहब को वेलकम करें।
जी समर साहब, ये रिको डिक का आजकल बड़ा चर्चा चल गया है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने एक अवार्ड दे दिया, वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स ने कह दिया है कि ये अब हम इसमें बैटल हार गए हैं और अब हमारे पर डैमेजेस पड़ेंगे, वो डैमेजेस असेस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल इस स्टोरी में बहुत कन्फ्यूजन है। मैं जो देख रहा हूँ मीडिया पे, किसी को कोई समझ नहीं आ रही, लंबे लंबे प्रोग्राम कर रहे हैं बट डिटेल्स किसी को नहीं पता। मुझे याद है कि मैंने इसको बड़ी अच्छी तरह स्टडी किया था, तो पहले तो इसको बताएं कि यह सिलसिला शुरू कहां से हुआ।
और उन्होंने ये लीज 2000 तक रखी, 2000 तक, और आफ्टर 2000 दे सोल्ड इट फॉर $200 million और समथिंग लाइक दैट।
पहले वो पहली चीज को एग्जामिन कर ले। आप ये बताइए कि ये बीएचपी बिलेटिन, माशा ठीक है, बड़ी कंपनी है, नाम इसका अच्छा है, पर ये बताइए कि इनको ये लीज मिली कैसे? और लीज में आप तो बेहतर जानते हैं मेरे से कि माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में हमेशा कोई ना कोई डिटेल तो होती है, कितने टाइम के लिए मिली, क्या इन्होंने करना था, क्या ये आगे बेच सकते थे, हमारे किस फोरम ने इनको ये परमिशन दी, ये जरा बताइए ना चीज़ें।
पूरे एरिया पे स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, नॉर्मली द फर्स्ट टाइम पीरियड इज 3 years, बट बीएचपी केप्ट द लीज फॉर अबाउट 6 years एंड देन दे सेड वी डोंट वांट टू कंटिन्यू एंड दे गिव इट अप टू सैनकोर व्हिच इज एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी। अब ये जो रूल्स है वो ये कहते हैं कि अगर ये 3 साल से ज्यादा सील हो गया तो इट शुड नॉट हैव बीन एक्सटेंडेड. एक्सटेंशन लीज की तब होती है कि आपने 90% काम या 70% काम करके एक्सप्लोरेशन का और सबमिट कर दिया और फिर आप कहते हैं कि बस थोड़ा सा रह गया तो मुझे एक्सटेंशन दे दें. बट बीएसपी डिड नथिंग ऑफ द सॉर्ट.
नहीं पर मुझे बताओ व्हाट हैपेंड. और किसने दी
कि बलूचिस्तान के जो ब्यूरोक्रेसी है दे वो काफी आपको पता ही है किसने सख्त करप्ट हैं और अभी भी वो बंदे अंदर उस वक्त भी जेल में थे और अभी भी जेल में हैं. वो उन्होंने करप्शन की वजह से इनको काफी रूल्स रिलैक्स करके दिए इन फेवर ऑफ बीएसपी एंड दैट इज व्हाई दे कुड कंटिन्यू टू फॉर 8, 9, 6, 7 years एंड दे डिड नॉट सबमिट एनी डेटा ऑफ ड्रिलिंग डेटा टू द गवर्नमेंट.
क्या हमारा
इन्होंने अलाउ किया ये भी अलाउ कर
हमारे कमजोर है कि एक जूनियर ऑफिशियल बलूचिस्तान गवर्नमेंट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जहां हमें पता है कैपेसिटी भी बड़ी कमजोर है क्या वो तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है उसको रिन्यू कर सकती है बगैर किसी के देखे.
देखिए ये तो बात है कि अगर आपको कैपेसिटी ना हो ना वन कैन हायर इंटरनेशनल कंसल्टेंट और कपल ऑफ कंसल्टेंट्स टू एडवाइस द गवर्नमेंट. वो उन्होंने नहीं किया. उन्होंने पैसे वैसे लेकर खुद ही करते रहे जो करते रहे और किसी को बताया भी नहीं. तो यही वो इसमें एग्रीमेंट में ये था कि 75% शेयर होगा बीएसपी का और उसके बाद 25% शेयर प्रॉफिट में होगा बलूचिस्तान गवर्नमेंट का और शेयर उस सूरत में उनको मिलेगा प्रॉफिट में कि अगर वो 75% इन्वेस्टमेंट भी करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग जो एस्टेब्लिश करने के लिए माइनिंग इक्विपमेंट और माइनिंग प्लांट सारी. तो जब ये इन्होंने सेल किया टू सेलकोर व्हिच केप्ट इट फॉर अ ईयर एंड देन दे ट्रांसफरड इट ऑन टू टीसीसी व्हिच इज टीथियन कॉपर कंपनी.
फिर बताइए कि ये भी क्या कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि वो जिसको मर्जी बेच दे. मतलब
नहीं ये तो नहीं होता. ये तो नहीं होता. यही तो हुआ ना कि ये इन्होंने पूरी रिलैक्सेशन पैसे वैसे देके करवा ली और ये सारा कुछ इस तरह से इन्होंने बेच लिया. और ये मैं आपको बताता हूँ ना ये करते रहे ये सारी हरकतें जिसके बाद मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई तो दे फाउंड इट ऑल दीस रॉन्ग डूइंग्स और उन्होंने एब इनिशियो इसको एग्रीमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया. दिस इज एडवेंचर हो गया. वो फिर
पहले बेचा सैनकोर को फिर सैनकोर ने आगे बेच दिया उसको टेथियन को. ठीक है नहीं जी. टेथियन ने पहले गोल्ड को इन्वॉल्व कर दिया. अब मुझे बताइए हमारे लोग बीच में सो रहे थे
पूरा एरिया रख लिया 400 किलोमीटर और उन्होंने 3 साल के लिए पहले एक्सप्लोरेशन लीज और 2004 में कहा कि जी अभी हमारा काम रहता है और डेटा थोड़ा सा सबमिट किया उन्होंने 2004 में और उसके बाद फिर उन्होंने 3 साल और की एक्सटेंशन ली तो वो हो गया 2007 उसके बाद और एक्सटेंशन ली. इन शॉर्ट ऑल दीज एक्सटेंशंस वर गिवन एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्राइबिंग बाय द कंपनी इंटरनेशनल कंपनी टू द बलूचिस्तान ब्यूरोक्रेट्स. 2011 में ट्यूशन कंपनी ने अपनी फिजिबिलिटी सबमिट की. नाउ दे केप्ट 400 स्क्वायर किलोमीटर 1993 से लेके 2011 तक for all these 18 years just around किसी और को आप वो एरिया दे नहीं सकते थे कोई और वहाँ काम नहीं कर सकता था. और 2011 में जब उन्होंने सबमिट किया तो इट द फिजिबिलिटी आई हैव गॉन टू दैट फिजिबिलिटी एन नंबर ऑफ टाइम्स. मैंने उसको उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाई हुई है 5 GB कॉपी. उसको मैंने पढ़ा बार बार पढ़ा क्योंकि उसमें यह लिखा हुआ था कि आप दे सबमिटेड फिजिबिलिटी ऑन ओनली 3 square kilometers 400 किलोमीटर पास रखा 18 साल फिर आपने 3 किलोमीटर की फिजिबिलिटी सबमिट की तो विच इज ऑफ कोर्स अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एक्सप्लोरेशन लीज. पर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें अब माइनिंग के लिए माइनिंग करना चाहते हैं और माइनिंग के लिए अब रिकॉर्डिंग में 28 इंडिपेंडेंट माइंस 28 माइंस हैं व्हिच वर identified by Geological Survey of Pakistan in 1973-74 उसका बहुत elaborate map international publication उसकी है. वही map देख के TCC ने काम शुरू किया उसे ये के लीज दी. तो 28 माइनिंग का उन्होंने कहा कि हमें आप माइनिंग लीज दें और सबमिट की फिजिबिलिटी ऑफ ओनली वन माइन विच इज कॉल्ड H14. तो उस माइन की सबमिट की फिजिबिलिटी जब 3 किलोमीटर की तो अब साथ आपको एक ड्राफ्ट टर्म्स एंड कंडीशंस देनी पड़ती है कि अब आप माइनिंग किस कंडीशंस पे करेंगे एंड दैट इज अ ड्राफ्ट एग्रीमेंट व्हिच दे पुट ऑन द टेबल ऑफ द चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जो असल में ईसानी साहब थे. उस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि वी विल डू द माइनिंग एंड वी विल प्रिपेयर अ स्लरी विच विल कंटेन ऑल द मिनरल्स और मेटालिक मिनरल्स. उसने यहाँ पे जब फिजिबिलिटी दी उसमें लिखा हुआ है वहाँ पे कॉपर भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, मोलिब्डेनम भी है और कुछ मिनरल्स भी हैं विच वी फील आर मे बी रेयर अर्थ्स बट दे डिडंट स्पेसिफिकली से दैट. और उन्होंने कहा इस स्लरी को हम एक पाइपलाइन रिकॉर्डिंग से गवादर तक बनाएंगे 630 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन क्योंकि ग्रेडियंट है 800 मीटर का रिकॉर्डिंग के जेड हाइट में अबाउट 800 मीटर अबाउट सी लेवल. और गवादर पोर्ट पे वो हम स्लरी लेकर जाएंगे डाउन द पाइपलाइन और गवादर में हम टैंकर्स फिल करके ऑयल टैंकर्स फिल करके स्लरी उसमें लोड करेंगे जैसा ऑयल क्रूड ऑयल लोड करते हैं एंड दिस विल बी टेकन टू अ थर्ड कंट्री नॉट पाकिस्तान समवेयर एल्स. वहां पे दे विल सेपरेट ऑल द मेटल्स कॉपर गोल्ड सिल्वर फ्रॉम द स्लरी एंड देन दे विल सेल दोस मेटल्स. और वो नॉर्मली यही होता है कि जब ये बेचते हैं तो अपनी किसी सिस्टर कंपनी एक बना देते हैं उसको बेच छोड़ते हैं एट अ लो प्राइस. वो कहते हैं हम बेचेंगे और बेचने के बाद फिर हम आपको ग्रॉस बताएंगे प्रोसीड्स क्या हैं. यू विल हैव नो इनसाइट इनटू हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टेकन अवे. वी विल टेल यू व्हाट इट इज एंड वी विल सेल इट एट अ प्राइस व्हिच वी विल डिटरमाइन एंड देन जो ग्रॉस प्रोसीड्स होंगे उसका 2% आपको रॉयल्टी सिर्फ देंगे. बलूचिस्तान गवर्नमेंट को उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो जॉइंट वेंचर है इनिशियली जो 1994 में साइन हुआ था दैट इज के एंटाफ्रागोस्टा और बारक गोल्ड विल हैव 37.5% ईच सो 75% होगा और 25% प्रॉफिट में शेयर होगा बलूचिस्तान गवर्नमेंट. अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट में फिजिबिलिटी जी हाँ फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये लिखा है कि 25% लेने के लिए हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हम एनवेसिस करती हैं इज $3.2 बिलियन. तो आप $800 मिलियन आप देंगे अप फ्रंट कैश फिर आपको 25% प्रॉफिट में शेयर मिलेगा और वो होगा. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास तो $800 मिलियन नहीं आपको देंगे तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको $800 मिलियन लोन दे देंगे एट लाइबर प्लस 1% पे एंड इट विल हैव टू बी पेड बैक इन 8 years. ये मैं सब फिजिबिलिटी रिपोर्ट बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ी है मेरी जुबानी याद हो गई. वो उन्होंने इनको कहा वो लोन ले लें और 8 साल में लोन पे कर दें और साथ ये कहा कि जो प्रॉफिट होगा इन द फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर देयर विल बी नो प्रॉफिट और जो फिर उसके बाद जो प्रॉफिट होगा इट विल बी 12% IRR. अब 12% IRR आपका प्रॉफिट है उसका 25% comes to 3% profit. So upfront अगर आप $800 मिलियन उनको लोन लेते हैं उनसे और लाइबर प्लस 1% पे लेते हैं तो वो आपका जो इंटरेस्ट ही है वो ही बनता है उसके ऊपर 4-5%. तो अगर 3% प्रॉफिट मिलता है दैट मींस इट्स अबाउट -1 or -2% नलीफाई हो तो ऑल योर
एक मिनट
ऑल योर लेफ्ट 2% रॉयल्टी दैट्स ऑल यू आर लेफ्ट विद.
मुझे एक बात बताइए
तो
मुझे एक बात बताइए 400 किलोमीटर क्या माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में इतना बड़ा लैंड दिया जाता है कि नहीं दिया जाता?
नहीं जो हमारे बलूचिस्तान माइनिंग रूल्स है 1971-1972 के उसमें ये था कि जिस माइन की एक्सप्लोरेशन होती है और उसकी फिजिबिलिटी सबमिट होती है सिर्फ आप उसकी ही माइनिंग लीज यू कैन रिक्वेस्ट. ये नहीं कि आप एक माइन की एक्सप्लोरेशन जैसे इन्होंने की थी और एक माइन की इन्होंने फिजिबिलिटी सबमिट की थी और 28 माइंस की इन्होंने वो मांग ली माइनिंग लीज मांग ली 28 माइंस की.
नहीं तो अगर
ये तो नहीं होता
इन्होंने एक्सप्लोरेशन एक के लिए की थी तो फिर इतना बड़ा क्लेम इनका कैसे बन गया?
मैं बताता हूँ ना क्लेम नहीं वो बना है वो आपको समझाता हूँ. आई अटेंडेड ऑल देयर एक्सेट हियरिंग्स तो वो इन्होंने जब ये कहा कि हमें ये दे रहे तो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने कहा उसके वर्ड से इन्होंने प्रेशर पे पड़ा डाला चिली का चीफ मिनिस्टर वो एम्बेसडर जाके उसको मिला क्वेटे में कैनेडा का एम्बेसडर जाके उसको मिला काफी इन्होंने जोर डाला साहब ने उसको काफी कहा दे दो लीज. उसने कहा कि जी मैं 2% रॉयल्टी पे ये तकरीबन $900 बिलियन का ये एसेट है और ये इन्होंने एक माइन के लिए कहा हमें 56 years चाहिए इस माइन को माइन करने के लिए तो ये 28 माइन के लिए मैं अगले 1000 साल का ये सारा एसेट I can't sell it off like this at 2% royalty. तो मैं तो ये अपनी अगली कितनी पूछता हूँ कि अमानत जो है इसको बेच नहीं सकता. He said these words. तो उसने वो accept नहीं किया. उसने उनको insist किया कि तुमने एक माइन किया, इसी माइन की तुम लीज मांगो. और दूसरी मेरी शर्त यह है कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में कॉपर और गोल्ड प्रोड्यूस करो ताकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री वो आपसे कॉपर खरीदे, गोल्ड हमारा मार्केट में आप खुद बेचो, और उसके बाद यहाँ पे हमारे बलोचिस्तान में फिर ये हो जाएगा कि ब्रास मिल्स लग जाएगी कॉपर इंडस्ट्री के लिए, कॉपर ट्यूबिंग बनने की फैक्ट्रीज लग जाएंगी एयर कंडीशनर्स के लिए और बहुत सी चीजें, तो हमारे लोगों को जॉब्स मिल जाएंगी, तो हमारे मुल्क की प्रोविंस की डेवलपमेंट होगी. तो आप यहाँ पे बनाओ कॉपर बड़ी शॉप से बनाओ, और एक माइन के लिए जो आपने एक्सप्लोरेशन किया फिजिबिलिटी दिया उसी के लिए मांगो. बट दिस पॉइंट एंड दे कैप पुटिंग प्रेशर ऑन टू एम्बेसडर्स और दारी साहब ने भी कहा सबने कहा. तो फिर ये जब बात हुई तो पहला काम ये हुआ कि इन्होंने रिफ्यूज कर दिया उनको माइनिंग लीज. एज सून एज दैट हैपेंड देन दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने वो केस शुरू किया. वहां पे हेयरिंग हुई, वो हेयरिंग चलती रही कुछ साल डेढ़ साल चलती रही. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उन्होंने मुझे भी बुलाया कि भाई आगे हमें ब्रीफ करें. अच्छा, इस दौरान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक प्रोजेक्ट उन्होंने कहा हम अपना करते हैं किसी एक माइन पे. उसके लिए उन्होंने पीसी वन बनाया. वो पीसी वन जो था
वो बाद में डिस्कस, मैं उसको वो जरा बाद में डिस्कस,
वो बाद में
जरा मुझे बताइए कि
एनीवे
ये सुप्रीम कोर्ट में माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट रॉयल्टी पे जरा बताइए. माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में 2% नॉर्मली माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या रॉयल्टी होती है बाकी दुनिया में?
रॉयल्टी 2% भी होती है, 3% भी होती है और 5% भी होते हैं. ठीक है, और जो प्रॉफिट है आपको मैंने बताया 25% का, और इन्वेस्टमेंट करके चाइनीज ने इन राइटिंग इनको प्रपोज किया कि आप हमें यहाँ पे इजाजत दे रहे हैं माइनिंग की, हम आपको आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं मांगते, वी विल इन्वेस्ट एवरीथिंग एंड वी विल पे यू 50% प्रॉफिट ऑन द टोटल प्रॉफिट. 50% शेयर देंगे हम आपको. चाइनीज ने ये इन राइट सबमिट भी किया उनको. एनीवे तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
चाइनीज ने रॉयल्टी कितनी दी ऑफर की?
नहीं, चाइनीज ने रॉयल्टी 5% दी थी और प्रॉफिट का शेयर 50% दिया था, ऑफर किया था. और ये ऑफर हां उधर का इनफॉर्म राइट रिटन एग्रीमेंट की शक्ल में था. और वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट होता है, जैसे आपको मंजूर है तो आप साइन करते हैं और फिर मैं लीज देते हैं, अगर नहीं मंजूर तो ना करें. बट तो ये था काउंटर ऑफर फ्रॉम द चाइनीज. और वो उनकी ओरिजिनल ऑफर थी, वो उनकी थी वो 25% प्रॉफिट का शेयर, $800 million इन्वेस्टमेंट करें आप और उसके ऊपर फिर आप 2% रॉयल्टी आपको मिले.
अच्छा, अब जरा थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा समराइज करने दें. देखिए समर साहब, जो आपसे मैं बात समझाऊँ वो ये कि जनाब इन्होंने 1993 में BHP बिलेटिन ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया और ये कोई बलोचिस्तान के किसी अफसर ने दे दिया, ये कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ, ये ऊपर कहीं गया नहीं, कोई इसकी ड्यू डिलीजेंस पता नहीं कितनी हुई है. ठीक है, नंबर दो ये अच्छा वो अभी तक जो इस बंदे ने दिया वो जेल में. अच्छा ठीक है जी, 7 साल इन्होंने रखा, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं की, रिन्यू करते गए, फिर इन्होंने आगे किसी को बेच दिया जो कि ये क्या दुनिया में मामूल है आगे बेच देना इस किस्म की चीज, या कि ये नहीं होता ऐसी चीज?
ऐसे बिल्कुल नहीं होता, ये सब बलूचिस्तान रूल्स की वायलेशंस हैं और रिलैक्सेशंस हैं व्हिच वर गिवन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्राफ्ट एंड प्रेजी.
रखा उसने 3-4 साल रखा, उसने कुछ नहीं किया, उसने आगे बेच दिया टेथियन को.
हाँ,
अच्छा अब वो ये जो है टेथियन और बैरेक इन्होंने जब ले लिया तो डेढ़ साल रख के उसने बेच दिया आगे. ठीक है ना जी, और उसने जनाब वो क्या कहते हैं इन्होंने फिर एक्सप्लोरेशन की, वो भी आगे करते रहे. ठीक है जी, और आगे 2011 में 18 साल के बाद इन्होंने एक माइन पे फिजिबिलिटी दी जो कि 3 स्क्वायर किलोमीटर का था. इन्होंने 28 किलोमीटर का इन्होंने मांग लिया कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है जी, बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि जो आपने एक्सप्लोर किया उसी को आप करें.
400 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मांगा इन्होंने, माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मांगा था 100 स्क्वायर किलोमीटर.
अच्छा,
उनके एक अपर लिमिट थी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मोर देन 100 स्क्वायर किलोमीटर. तो इन्होंने 99 स्क्वायर किलोमीटर का मांग लिया था जिसमें 28 माइंस.
अच्छा, अब जो ये बलोचिस्तान गवर्नमेंट का जो था क्या कहते हैं क्लेम, ये था कि आपने एक ही महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो एक ही महीने पे आप करें एक्सप्लोर, पूरे 28 महीने नहीं कर सकते, ठीक है जी। अच्छा
जी,
फिर उन्होंने जो ऑफर किया, ऑफर ये किया कि 2% रॉयल्टी, 25% प्रॉफिट अगर आप पैसे डालेंगे। अगर आप पैसे नहीं डालेंगे तो 25% नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ 2% मिलेगा, ठीक है ना जी। अच्छा, अगर ये स्टोरी है तो मुझे ये बात बताइए कि जब हम इंटरनेशनल कोर्ट में गए तो हमारे बंदों ने क्या ये बातें ठीक तरह की नहीं, हम हार क्यों गए?
मैं बताता हूँ, एक केस हुआ था 2012 में, वो केस ये था कि जब आप लोशन गवर्नमेंट ने अपना प्रोजेक्ट बनाया कि हमें एक महीने पे खुद काम करना है, तो उन्होंने टीसीसी ने स्टे ऑर्डर के लिए एक स्टेट में अप्लाई किया, और आईसीसी भी था, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो कोर्ट है उसमें भी, और दोनों कोर्ट्स में ट्रिब्यूनल्स में उन्होंने कहा कि हमें स्टे ऑर्डर देंगे, यहाँ पे किसी महीने पे ये काम ना खुद करें। उसके हियरिंग में मुझे ये ले गए एज अ टेक्निकल टेक्निकल विटनेस। लॉयर जो थे उधर से अहमद बराज सूफी थे और उधर से आर्थर मैरियट थे, वो वेरी लीडिंग लॉयर आजकल की तरफ बीमार है, और साथ शीरी वो क्या शेरी ब्लेयर थी, टोनी ब्लेयर की वाइफ, तो वो लॉयर्स की पैनल काफी स्ट्रॉन्ग थी। और उसके बाद वहां पे इन्होंने आर्गू किया, तो कुछ किया, मैंने भी अपना पार्ट प्ले किया, मैंने उनको बताया सारा टेक्निकल डिटेल्स बताई कि ये इतने बिलियन डॉलर्स का ये है जैकपॉट है, ये 2% रॉयल्टी पे दे आर कमिटिंग डे लाइट रॉबरी, मैंने ये वर्ड्स यूज किए, वो मेरे पर प्रोसीडिंग सारी पड़ रही है कोर्ट की, वो टाइप की प्रोसीडिंग भेजती है बाद में। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि स्टे विल नॉट बी ग्रांटेड, और स्पेसिफिकली लिखा, बल्कि मेरा नाम ही लिखते हैं, डॉक्टर समर कैन स्टार्ट हिज ओन प्रोजेक्ट एट माय नंबर H4 एंड प्रोसीड विद हिज वर्क, और उनको कहा कि जी आप जो बाकी की माइंस है उसके लिए आप जो माइनिंग के लिए वहां पे अपना एप्लीकेशन दी हुई उसको परसू करें। तो वो ये फैसला हो गया, तो हम इधर आए, उन्होंने हमें उस माइन के साथ 8 square kilometers की जगह दे दी कि आप अपना काम शुरू करें। ये तो हो गई एक बात। अब वो जो इतने डिमोरलाइज हुए स्टे ऑर्डर से, व्हाट दे डिड वाज कि दे रोट अ लेटर टू द एक्सेल दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन माइनिंग एट रिकॉर्डिंग एट ऑल, वी डोंट वांट टू माइन एट रिकॉर्डिंग, उन्होंने ये लिख दिया। और उन्होंने ये कहा कि हमें वहां पे पैसे, वी हैव स्पेंट मनी ऑन एक्सप्लोरेशन फॉर 11 years एंड वी हैव स्पेंट मनी ऑन द फिजिबिलिटी रिपोर्ट, तो हमें आप इसकी कॉम्पेंसेशन चाहिए, वी वॉन्ट टू बी पेड और मनी बैक। उसके लिए फिर ये, अब ये सेपरेट एक केस शुरू हो गया कि इनको पैसे देने चाहिए, कि पाकिस्तान ने कॉन्टेस्ट किया कि इन्होंने इतनी वायलेशन की है, 11 साल तक रखा है हमारा एसेट, इस दौरान हम किसी और को दे दो तो हम पता नहीं क्या कुछ मार लेते, हमारा नुकसान हो गया। तो इन्होंने जो कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं अपने ड्रिलिंग जो इन्होंने की है वो इनको नहीं बनती हमें देना, we don't have to pay them anything। तो ये कॉन्टेस्ट थी, दिस वॉज द केस विच वॉज कंडक्टेड, एक्सेल मूव फ्रॉम लंडन टू पेरिस इन द मीन टाइम, और दिस हियरिंग वॉज डन इन पेरिस इन 2014 अक्टूबर की बात। उसमें भी मैं गया था, वहां पे मैंने उनको बताया कि देखें अगर आप एक्सप्लोरेशन की बात करें तो मैंने इंटरनेशनल टेंडर बिडिंग करवा के चिनोट में 28 square kilometers, अब आई एम टॉकिंग एज चेयरमैन ऑफ द पंजाब मिनरल कंपनी, आई एम बोर्ड ऑफ चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनका हमने इंटरनेशनल टेंडर किया जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी सब ने पार्टिसिपेट किया, हमने 28 square kilometers का एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, उसका हमने टेंडर अवार्ड किया फॉर एक्सप्लोरेशन एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एंड इट केम टू $14 million, $14 million का, ये इंटरनेशनल कंपटीशन के बाद बिल्डिंग के बाद ही हुआ, ये अवार्ड किया हमने, तो $14 million का इंटरनेशनल रिटर्न हुआ। तो अब ये मैंने वहां पे जान के बात की ताकि अगर जब क्लेम की बात होगी, पैसों की बात होगी कि इनको कितने पैसे देने हैं, तो कोर्ट के रिकॉर्ड में ये बात आ जाए। तो मैंने कहा इन लोगों ने 11 साल हमारा एसेट ब्लॉक करके रखा, उससे पहले 7 साल भी रखा, तो इन्होंने हमें जब रिपोर्ट पकड़ाई एक्सप्लोरेशन की, सिर्फ 3 किलोमीटर की पकड़ा दी, तो 3 किलोमीटर का जो डेटा है हर मंथली रिपोर्ट मेरे पास इन्होंने भेजते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट को मेरे पास भी कॉपियां पड़ी हैं, हर रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने लिखा है इस महीने हमने इतने काम किया, इसमें इतने होल्स ड्रिल किए, इतने हमारे पैसे खर्च हुए, साइंड एंड स्कैंड बाय टीसीसी, वो टोटल जो रिपोर्ट्स के पैसे बनते हैं वो इन्होंने लिखे जो काम किया, वो 2005 और 2006 में सिर्फ 2 साल में सिर्फ काम किया वो 3 स्क्वायर किलोमीटर का, एंड टोटल कम टू $125 मिलियन. ये हाँ से जो मांग रहे हैं 100 किलोमीटर का एरिया, इनको पता है बाकी एरिया में क्या है, लेकिन इन्होंने हमें उसको बताया बिल्कुल नहीं, और हमें एक माइन का बताया कि ये थोड़ा सा है इसमें तो आप हम ये माइन लीज दे दें, बट दे वांट द होल एरिया फॉर माइन. मैंने कहा ये थोड़ी सी
मुझे बात बताइए कि इन्होंने मतलब ICSD ने क्यों हमारे खिलाफ दिया ये वर्डिक्ट, अगर के हमारा केस स्ट्रांग था तो क्यों हमने उसको प्रूव नहीं किया?
इन्होंने बात ठीक की है, गलत नहीं बात की, इन्होंने वर्डिक्ट ये दिया है कि भाई इनको जो भी है खर्च किया है पैसे आपको देने बनते हैं,
ठीक है,
जब ये क्लेम फाइल करेंगे आपके अमाउंट कुछ पूछेंगे उस फिर पर आप उसका अमाउंट को फिर आप कॉन्टेस्ट करें कि नहीं इतने पैसे नहीं बनते इतने बनते हैं, और आपको हम ये भी कहेंगे वो ड्रिलिंग डेटा आप हमें दें सर, ड्रिलिंग डेटा इन्होंने हमें जो दिया था उसके ऊपर जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकेशन है ना एवरी होल उसके ऊपर ब्लैक इंक फेंकी ताकि नजर ना आए कि किस जगह पे ये ड्रिल हुआ है, ताकि आप चले किस जगह पे कितना ओर है,
कितने क्या आएंगे. हमें जो तो जो मीडिया पे पता चल रहा है, मीडिया पे जो पता चल रहा है वो कह रहे हैं कि हमें $5 या $10 बिलियन का फाइन पड़ेगा.
अपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट की प्रेपरेशन और एक्सप्लोरेशन डेटा के पैसे मांगे हैं, और फिर उन्होंने 2 वीक्स थी, उसके बाद अब तक ये 17 तक ना कोर्ट डिसाइड नहीं कर सका इस केस को, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर उन्होंने कागज और मांगे, अब उन्होंने कहा ये क्लेम तो उनको वो करने का उनको राइट बनता है, वो कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं, आप अपने एक्सप्लोरेशन किया उसके पैसे. इस 2 साल के दौरान एक और काम हुआ जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि TCC ने खत लिखा एक्सेट को कि हमने पैसे इन 8 बंदों या 9 बंदों की हमने लिस्ट दी कि हम इनको सबको इतने इतने पैसे ब्राइब किए,
अच्छा,
और इनके पैसे ब्राइब किए हैं तो हमें ये ब्राइब के पैसे तो प्लीज वापस करवा दें जो जो इतना अमाउंट बनता है.
बाकी ये लिखा है
आप एक जब एक मल्टीनेशनल कंपनी खुद एडमिट करती है कि हमने करप्शन की और ब्राइबरी की है, पैसा दिया है, लीज की डीलिंग शीलिंग सब कुछ किया था, जिसने हमारा प्रोजेक्ट भी बंद कराया था, और उसके साथ उसका मलंगा जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर था और एक दो तीन और बंदे, उनके घर के पानी के टैंकियों में से कैश निकला 67 करोड़ रुपीस, और कितने टन मनों के हिसाब से सोना और 12 की कोटियां कराची डिफेंस में निकली है, मर्सिडीज खड़ी हुई गैराजों में, वो ही नाउ बी इन्वेस्टिगेटेड बाय नैब जेल में अपने 2 साल और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और बाकी 3-4 बंदे और भी हो रही, वो लिस्ट की वजह से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी. तो ये करप्शन के साथ रिजल्ट है जो जिसकी अतरीश कंपनी का तो भाग बनता ही है कि ये एक्सर्ट के पास भी जा रहे करना चाहिए, अगर एंटरटेन करेंगे तो वो इन राइटिंग स्टैम्प लगा हुआ इनका $125 मिलियन बनता है, उसको नेगोशिएट करने उनसे पहले कहेंगे हमें डेटा दे दें सारा डेटा दे, हम इसको एकदम चेक 2-3 चेक हम खुद कर लेंगे, और उसके बाद अगर डेटा में रैंडम चेक कर लेते ठीक है जो 25 मिलियन आप क्यों ले रहे हैं हमने इंटरनेट टेंडर किया हमारे 14 मिलियन में काम हो गया 28 किलोमीटर आ रहे 3 किलोमीटर आप नेगोशिएट करते जो पैसे बनते हैं उनको देने कोर्ट में करने बात मुझे कितने को बिलियन का डॉलर की बात नहीं है ये सारी सब उड़ाई में तेरी बाहर दरवाजा बंदा बैठ
एक और बात बता दीजिए कि क्या ये हमारी कैपेसिटी क्योंकि हमें आगे भी बहुत बड़े बड़े ऐसे काम करने पड़ेंगे हमारी कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड एक्सिक्यूट दीज डील्स ये हमारे पास है या हम ऐसे ही मार खाते रहेंगे हर कॉन्ट्रैक्ट में
ये जो देखिए जो कैपेसिटी टू नेगोशिएट दीज डील्स है ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता डिपेंड करता है कौन किस किस्म के हम लॉयर्स हायर करते हैं और वो लॉयर्स की क्या अकल और सूझबूझ होती है फिर मैंने आपको वैसे टेक्निकल फैक्ट्स बता दिए एज पर रिटन इन द फीजिबिलिटी रिपोर्ट
सिस्टम बनाया नेगोशिएशन का कोई फोरम बनाया जहाँ ये चीजें बातें डिस्कस हो कोई हमारा कोई थोड़ा कंट्रोल हो अगर हर खत्ते में एक कोई अफसर बैठ के ये साइन कर सकते ऐसी चीजें फिर तो हम बिक जाएंगे फिर तो बात नहीं बनेगी ठीक है ना कोई तो हमें कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए कोई तो सोचना चाहिए कि नहीं
जहाँ पर मुझे शहबाज सिंह ने कहा कि डॉक्टर हमारे सिर पे में आ सकते हैं चिल्ड्रन पे बड़े मेंबर्स आइडेंटिफाई हुए हैं प्लीज ऐसा कुछ करवा दें मैंने पहली मीटिंग में पहले उसने ये कहा कि आप अपने माइनिंग रूल्स जो है मिनरल्स जो आपके रूल्स बने हैं पंजाब के इनको तो आप अलावा कर मान हम जो काम करेंगे पर बिल्डिंग कराएंगे इंटरनेशनल टेंडर कराएंगे कॉम्पिटिशन कराएंगे और एक्सप्लोरेशन किया आप पैसे खुद खर्च करके इट इज नॉट एक्सपेंसिव और आप खुद कराएं अगर आपने एक्सप्लोरेशन राइट्स दे दी तो माइनिंग राइट्स बड़ी हद तक मॉरल उनकी ऑब्लिगेशन रहती है आपको उनको दे देगी आप ये मत करें और आप ये 14 मिलियन डॉलर में सारी एक्सप्लोरेशन होगी 28 किलोमीटर की अब हमारी मर्जी हम जिसको मर्जी माइनिंग राइट्स या ना दें अच्छा एक चीज और आपने अपनी टच की कि हमारी अपनी कैपेसिटी क्या रिकॉर्ड में व्हाई वी ब्रिंग इन द फॉरेन कंपनीज आप देखें 40 साल से हम यूरेनियम की और जिरकोनियम की माइनिंग कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूरेनियम की माइनिंग जो उसके लिए हमारे जो लोग ट्रेन होते हैं जो पीएचडी करके आते हैं और काम शुरू करके एटॉमिक एनर्जी के वो सारी बाहर मतलब मुल्क में जाके कॉपर की माइनिंग पे करके आते हैं पीएचडी बिकॉज कॉपर की माइनिंग और उसकी रिफाइनिंग की जो केमिस्ट्री है इट इज द सेम एज दैट फॉर यूरेनियम तो अगर आपने कॉपर की कर ली तो यूरेनियम की आप ऑटोमेटिकली आपकी होगी 40 साल से हमारी वो ट्रेडिशन है जिरकोनियम इज इवन मोर डिफिकल्ट कराची के न्यूक्लियर पावर प्लांट का फ्यूल बनता है वो हैफनियम फ्री बनता है पार्ट पर मिलियन प्योरिटी का वो फ्यूल होता है रिएक्टर का फ्यूल उसके बाद सैंडल में 1300 पाकिस्तानी आर माइनिंग द ओर इन सैंडल विच इज 20 किलोमीटर्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग माइनिंग भी कर रहे हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन रिफाइनिंग मेल्टिंग स्मेल्टिंग सारा वो काम वो पाकिस्तानी कर रहे हैं सिर्फ वहां पे चाइनीज लड़के बैठे हैं कुछ केमिस्ट जो ओर के सैंपल्स की केमिस्ट्री को चेक करती है प्योरिटी और उसके बाद बॉक्सेस में बंद करके उसकी इन्वेंटरी बनाकर उनको शिप करते हैं तो ये एक टीम पूरी सैंडल में 1200 बंदे की हैज बीन वर्किंग सिंस 2002 और 2017 16 साल का उनका एक्सपीरियंस है और वो प्लांट भी चलाते हैं सारे काम करते हैं वो प्लांट और माइन जो है सैंडल की इस साल एग्जॉस्ट हो रही है वो 1200 बंदे अवेलेबल होगा पाकिस्तानी आपको ये काम करने
मुझे एक बात बताइए कि सैंडल में अपने जो स्मेल्टिंग का इशू
पाकिस्तान में बड़ा हाई ग्रेड कॉपर एट डेप्थ ऑफ ओनली अबाउट 30-40 मीटर्स वो शिनकियाई का नॉर्थ वजीरिस्तान में वो ओवर माइन हो रहा है वो उसको माइन करते हैं ये जीटी रोड के ऊपर एक जगह शेखुपुरा गुजरावाड़ के दरमियान एक प्लांट लगी हुई है प्राइवेट सेक्टर में हमारे एक प्लांट लगी हुई है यहाँ पे हारो ब्रिज के पास हसरतदार के साथ जीटी रोड के ऊपर दोनों प्लांट उस ओवर की रिफाइनिंग कर रही है पाकिस्तान में बड़ी पुरानी ट्रेडिशन है हमारी ओवर निकल कब से निकलता जा रहा है हमें पता भी नहीं है लेकिन ये एक्सप्लॉयटेशन जो है ये लेसन शुड बी ड्रिवन होम टू ऑल इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आके और आप लोगों को पैसा शैसा चढ़ा के और आप 2% के ऊपर 900 बिलियन डॉलर के एसेट यहाँ से चोर करके नहीं ला सकते
अगर सैंडक में स्मेल्टिंग हम खुद कर रहे हैं
ऑफ कोर्स
अच्छा तो फिर अगर वहां स्मेल्टिंग हो रही है तो ये स्मेल्टिंग यहां रिकोडिक की स्मेल्टिंग यहां क्यों नहीं हो सकती
क्या उनकी मेहनत है कि रईसानी साहब ने आप थे
ये बताइए कि ये यहाँ स्पेल्टिंग प्लांट लगाने का क्या कॉस्ट बहुत ज्यादा
नहीं कोई कॉस्ट ज्यादा नहीं है एक फर्नेस होता है दैट्स ऑल अब वहां पे कोयला इतना कोल फायर फर्नेस है और बिजली की जरूरत ही नहीं है कोल फायर असल वो मेंटो का हो रही है वहां पे और दूसरी बात ये है कि ये लोग जब इनको हमने ऑर्डर किया कि आप यहां क्यों नहीं करते हो फिर अल्टीमेटली कहने लगे नहीं हम इट्स नॉट नॉट आवर जॉब इट्स नॉट इन आवर बिजनेस हमारी बात हमने स्पेंडिंग कभी की नहीं है वो इसलिए हम बाहर भेजेंगे किसी और से करा
जिससे वाटर ये जो बेचेंगे जो और निकलेगा उसको बेचने क्या रोल दें जैसे आपने कहा ना कि वो अपनी सिस्टर कंपनी को दे दें वो प्राइस पे वो क्या
और में सिर्फ 0.8% कॉपर है अब वहां पे 2.215 बिलियन टन्स उस माइन में ओर है जिसकी बात ये कर रहे थे जिसके एक्सप्लोरेशन हुई है 2.21 टन्स ऑफ ओर आपने अगर बेचना है तो इतना ओर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी प्रोहिबिटिव दिस इज व्हाई पीपल ट्रांसपोर्ट ओर एंड डोंट सेल ओर व्हाट हैपेंस इज कि आप ओर को में से एक्सट्रैक्ट करके सारा मेटल्स और एक उसकी कॉन्सेंट्रेट बना लेते हैं जो 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 ये प्रपोज कर रहे थे जिसमें तकरीबन 33% कॉपर और गोल्ड था उस कॉन्सेंट्रेट को जाना चाह रहे थे संदर्भ में तो वो 9% माइनिंग करके प्योर प्योरिटी से कॉपर और गोल्ड बन वो तो नहीं कोई बात तो ये तो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि अंदर जाना है एक लोगों का ये भी ख्याल था कि इसमें रेयर अर्थ है जो कि 1 किलोग्राम की कीमत 1 मिलियन डॉलर होती है रेयर अर्थ इन्होंने ढूंढ ली तो दे डोंट वांट टू प्योरीफाई एनीथिंग इन पाकिस्तान अब वो मुझे नहीं पता
ठीक तो समर साहब ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप हमारी आगे को भी ऐसी जो कॉन्ट्रैक्टिंग होगी क्या हम इसमें क्या कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी बनाने को आपने कहा इंजीनियरिंग कैपेसिटी हमारे पास है हमारे पास निगोशिएटिंग कैपेसिटी हमारे पास कैपेसिटी टू डू थिंग्स प्रॉपरली ताकि इस किस्म की गड़बड़ ना हो वो हम कैसे बना सकते हैं
जो हमें एक्सप्लोरेशन का जो टेंडर है उसकी बिल्डिंग जिसकी करानी है वो हमें टेंडर बनाकर दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स बनाकर 125-30 पेज का वो टेंडर डॉक्यूमेंट बना टू एंश्योर हमारे सारे राइट्स और उसने हमें साफ लिखा कि यू कम एंड यू डू दिस वर्क एंड वी एंड इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरवर्ल्ड स्टैंडर्ड्स ताकि हम इसको इस बैंकेबल डॉक्यूमेंट का बनाकर कल को माइनिंग के लिए सेल कर सके और वो हमने सारा कंडीशन जारी उसमें कहा कि इसकी केमिकल एनालिसिस कैनेडा से भी होगी और वो जो एंड क्या है वो कराची में कंपनी SGS की लैब से भी होगी दोनों जगह से होगी ताकि ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बने और ये आपकी सुपरविजन जो है वो हम एक जर्मन कंपनी से करवाएंगे वो उसके हमने 2 मिलियन डॉलर ज्यादा खर्च किया ताकि इसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम हो सके वो सारा उनको अग्री कराकर हमने फिर टेंडर किया और वो 125 पेज का टेंडर डॉक्यूमेंट वो हमने कंसल्टेंट से करवाया हमें खुद नहीं बनाना था हमने कहा वो हमारी गलती ना हो जाए हम ये लोग एक्सप्लॉइट ना करें बट हैविंग डन दैट वंस वी कैन नॉट रिपीट इट व्हेरेवर एंड व्हेनेवर वी वांट टू इन एनी मिनरल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान और अब हम आजकल हमने टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाया है कि इसकी माइनिंग के लिए चिल्लोट में वहां पे निकल आया कॉपर और निकल आया वहां पे आयरन ओर उसकी माइनिंग के टेंडर डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं बड़ी केयरफुल बना रहे हैं कंसल्टेंट से बनवा रहे हैं हम खुद नहीं चलाकी कर रहे कोई और उसमें जितना डेटा था एक्सप्लोरेशन का वो टेंडर डॉक्यूमेंट के साथ लगा रहे हैं ये हमारे एसेट्स हैं ये इनकी डेप्थ है ये इनकी प्योरिटी है ये इनकी टोटल क्वांटम है इसकी अब आगे माइनिंग करें और जो हमें लोएस्ट बिट देगा कि सो मेनी डॉलर्स पर टन ऑफ आयरन ओर या सो मेनी डॉलर्स पर टन ऑफ कॉपर जो लोएस्ट रेट देगा हम कंपेटिटिव बिडिंग कराएंगे उसको हम कहेंगे कि आप ये हमने बल्कि ये भी किया है माइनिंग मेथड्स उनको बता दिए कि इस ओर में ये माइनिंग मेथड्स आर द बेस्ट मोस्ट फीजिबल एक्सपर्ट्स हमने बनवा लिए ताकि वो भी उनको बता दें कि इस तरह माइनिंग करेंगे तो आपकी बेस्ट लिंग जो आपकी मर्जी है कौन सा करते हैं तो हमने ये सारा डॉक्यूमेंट तैयार किए लेकिन एक्सपर्ट्स को हायर करके किए लेकिन अब वो स्टैंडर्ड बन गया है आइंदा के लिए आप बलूचिस्तान में करें काम आप सिंध में करें कहीं भी करें इस तरह के रेडंडेंट डॉक्यूमेंट से आप काम करेंगे, हमने इनिशियली काफी पैसे खर्च करके एक्सपर्ट से बनवाए, कुछ नहीं बना सकते हैं।
समर साहब, इसमें एक आपसे एक दो आखिरी बातें पूछ लूं। एक तो ये कि ये पॉडकास्ट जो मैं करता हूँ, ये करता हूँ खास तौर पे इकोनॉमिक रिसर्च बच्चों के लिए जो उस पर काम कर यू नो रिसर्च का काम करें, तो इसमें बताएं कि ये इस एरिया में आप अगर सोचें जो हमारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं पीएचडी कर रहे हैं ये वो वगैरह, वो अगर इस एरिया में रिसर्च करना चाहें तो उनको क्या क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ से डेटा मिलेगा, कैसे वो, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इस पर जितना रिसर्च करेंगे ना उतना बातें ज़्यादा खुलेंगी, तो वो क्या करें, कहां से?
मेरे पास जो कुछ है जी, मेरा कंप्यूटर दो चीजों से भरा हुआ है, एक तो जो हमने टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं रोड के लिए वो भी मेरे पास है, एक जो इनकी एक इतनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी 46 वॉल्यूम्स की टीसीसी की, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी मेरे पास है, one should be able to see कि ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट की शक्ल में होनी चाहिए, वो सिर्फ लेवल से बनाई थी रिपोर्ट फिजिबिलिटी, इंग्लैंड में फॉर्म है एक लेवल है उनसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट का भी एक सैंपल पड़ा हुआ है, तो उन्होंने बहुत एलैबोरेट कर दिया रोड डालने के लिए, उसमें जो ट्रैक्टर यूज हो रहे हैं टायरों के साइज भी लिखे हैं, वो उसके ऊपर 80% रिपोर्ट है वो, लेकिन वाटर पाइपलाइन पे पानी कहाँ से लाएंगे और उसकी स्मेल्टिंग कैसे करेंगे और स्लरी कैसे बनाएंगे, 600 किलोमीटर की पाइपलाइन जो ग्वादर तक जानी है उसके पैसे भी उसमें इनिशियल एक्सपेंडिचर जो 3 बिलियन का उसमें डाले हुए हैं वो उसकी भी फिजिबिलिटी है,
आखिरी सवाल समर साहब ये बताइए कि अच्छा ये आखिरी सवाल एक बताइए, अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूँ, अब आपसे गेस्ट से पूछता हूँ, क्या किताब रेकमेंड करेंगे आप लोगों को पढ़ने के लिए जो आपने रिसेंटली पढ़ी है, जिसको आप जिससे आप बहुत मुतासर हुए? जो भी आप कहेंगे जस्ट के वो पढ़ सकें।
उनके सिर्फ चीफ को पैसे दे के गिरबर के जब वो पाइपलाइन लगाई 125 किलोमीटर की थी टू द कोस्ट लाइन, पहला टैंकर भरा निकल का सरी का और ले गए, जैसे दूसरा टैंकर भर रहे थे ना, तो वो जो लोग थे जंगल में cannibals, even they had the wisdom to find out कि ये हमारी वेस्ट जा रही है, मैं तो कुछ भी नहीं मर रहा, वो 2% तो कीफ भी खा भी जाता है, तो so what they did was
सऊदी अरेबिया में आराम
नहीं, ये
बहुत royalty ज़्यादा दे रही
है, ये पापा सब वहाँ देखो पता, ये पापा न्यू गोली जैसी जगह पे भी ये हुआ, they burned the China town, burned the facility and stopped the ये चीजें मतलब सारी दुनिया में होती रहती है, वहां पे जो डायमंड्स है आइबेरिया के वो क्या है वो आइवरी कोस्ट के, वहां पे आप देख लेंगे उन्होंने क्या किया, वो ट्राइबल वॉर्स करवा के आगे ट्राइब्स को बेल्जियम फाइनेंस करता, दूसरे ट्राइब्स को और फाइनेंस करता, एक दूसरे को कत्ल करते थे, 4 मिलियन लोग 2 मिलियन रह गए बचे औरतें, उसके बाद आकर उनके डायमंड माइंस ग्रैब करनी उन्होंने, ये तो ये दुनिया में ये कुछ होता है, आई थिंक दे शुड नो दिस
तो अब कम से कम ये तो है कि लोगों को फैक्ट्स तो पता चल सकेंगे ना, मैं यही पॉडकास्ट करना चाह रहा था कि फैक्ट्स तो पता चले, क्योंकि मैंने टीवी पे जो डिबेट देखी है उसमें फैक्ट्स कोई नहीं है, सिर्फ एक इमोशनल लेवल पर बात कर रहे हैं, तो मेरा यही था फैक्ट्स हम दे दें, तो थैंक यू वेरी मच, यू बीन वेरी काइंड, अब हम आगे किसी और सब्जेक्ट पे बात करेंगे, बट थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट,
ओके,
सोच विचार के साथ मेरा नाम नदीम उल हक है
और मेरा नाम अंजुम अल्ताफ है।